एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रीयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। अशैव मार्गशीर्ष मासस्य चतुर्थी दिवसे सम्पन्नस्य प्रतिनिधिसभाया प्रदेशसभानां च सदस्यानां निर्वाचनस्य अन्तर्गतम् प्रतिनिधिसभाया सदस्यानां प्रत्यक्ष पक्षे इदानीं यावत् 57 सदस्य स्थानानां मतपरिणाम उद्घुष्टो वर्तते। इदानीं यावत् नेपाली कांग्रेस दलेन 2, नेकपा एमाले दलेन 2, नेकपा माओवादी केन्द्रेण 17, नेकपा एकीकृत समाजवादिना 10 च स्थानेषु विजय प्राप्तो वर्तते। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दलेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलेन च प्रतिदलम 7 स्थानेषु विजय लब्धोऽस्ति। जनता समाजवादी दलम 6, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलम 4, नागरिकोन्मुक्ति दलम च 3 स्थानेषु विजय प्राप्तवन्ती सन्ति। जनमत दलम, नेपाल मजदूर किसान दलम, राष्ट्रिय जनमोर्चा दलम च एकैकम स्थाने विजय लब्धवन्ती वर्तन्ते। एवमेव 5 स्थानेषु स्वतन्त्र प्रत्याशिन विजयिन संवृत्ता सन्ति। मतगणनाया पश्चातन परिणामस्य अनुसारेण इलाम जनपदस्य प्रथम निर्वाचन क्षेत्रात् नेकपा एमाले दलस्य प्रत्याशी महेश बस्नेत 25 सहसाणी 50.7% च मतानि प्राप्य प्रतिनिधिसभा सदस्य पदे निर्वाचितो वर्तते। बस्नेत इत्यस्य निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस्य झलनाथ खनालः 88.23 सहसाणी मतानि प्राप्तवान् वर्तते। अत्रान्तरे पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल पत्रकार सम्मेलनम् आयोज्य निर्वाचनस्य प्रारम्भे 37.4% मतपत्राणि विलुप्तानि, पश्चात् पुनः अपर स्थानस्य मतगणनाया क्रमे 66.2% मतानि अधिकानि च प्राप्तानीति प्रमाणेन निर्वाचन मतगणना च निष्पक्ष न दृष्टि इति तर्केण पुनर्मतदानम् अभ्याचत। अपरत्र समानुपातिक पक्षेऽपि प्रत्यक्ष पक्षस्य मतपत्राणि सम्भवेयु इति वितर्क समानुपातिक पक्षस्य मतगणनाया समाप्ति अनन्तरमेव आधिकारिक रूपेण विजयी उद्घुष्यति इति निर्वाचनाधिकृतस्य कार्यालय ज्ञापयति। इलाम जनपदस्यैव द्वितीय निर्वाचन क्षेत्रात् नेकपा एमाले दलस्य उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ 20.33% सहसाणी मतानि अवाप्य प्रतिनिधिसभा सदस्य पदे विजयी सम्वृत्तो वर्तते। नेमाङ इत्यस्य निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस दलस्य इलाम जनपद सभापति डम्बर बहादुर खड्का 29.69% मतानि प्राप्त। महोत्तरी जनपदस्य प्रथम निर्वाचन क्षेत्रात् प्रतिनिधिसभा सदस्य पदे नेकपा एमाले दलस्य लक्ष्मी महतो निर्वाचितो वर्तते। महतो इत्यनेन स्वस्य निकटतम प्रतिस्पर्धिनं नेकपा माओवादी केन्द्रस्य नेतारं गिरिराजमणि पोखरेलं 1,133 मतानाम् अन्तरेण विजय प्राप्तोऽस्ति। महतो इत्यनेन 24.1% च पोखरेलेन च 23.7% मतानि प्राप्तानि सन्ति। निर्वाचन आयोगेन दोलखा जनपदस्य 4 मतदान स्थलानां 10 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदान निर्णीतम् अस्ति। आयोगेन अशैव मासस्य 15 दिवसस्य अभ्यन्तरे मतदानं कारयितुं दोलखा जनपदस्य मुख्य निर्वाचनाधिकृत निर्दिष्टो स्थिति आयोगस्य प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल अज्ञापयत्। आयोगेन विवादित मतदान स्थलानि अध्येतुं संघटितेन समूहेन प्रदत्तस्य परामर्शनस्य आधारेण अशैव मार्गशीर्ष मासस्य चतुर्थे दिवसे विहितं मतदान निरस्तीकृत्य पुनर्निर्वाचनं विधीयमानम् अस्ति। निर्वाचनायोगेन पुनर्मतदानस्य दिन निर्धारणाधीन आवश्यक सम्पूर्ण निर्णयन कर्तुं दोलखा जनपदीय मुख्य निर्वाचनाधिकृत कार्यालय निर्दिष्ट स्थिति प्रवक्ता पौडेल असूचयत। एवमेव विवादस्य कारणेन अवशिष्ट मतगणनायो स्याङ्जा जनपदस्य द्वितीय निर्वाचन क्षेत्रस्य बाजुरा जनपदस्य च सम्बन्धीपि आयोगेन अध्ययनं विधीयमानमस्ति। अध्ययन प्रतिवेदनस्य आधारेण शीघ्रमेव निर्णिष्यति इति च प्रवक्ता पौडेल अज्ञापयत्। बाजुरा जनपदे अशैव मार्गशीर्ष मासस्य चतुर्थी दिवसे सम्पन्नस्य प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभानां च सदस्यानां निर्वाचनस्य मतगणना अनिश्चिता वर्तते। जनपदस्य विभिन्नेषु मतदान केन्द्रेषु नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले दलयो कार्यकर्तृभि मतदान स्थलं नियन्त्रण कृत्रिम मतानि निपातितानीति उल्लिख्य निर्वाचन आयोगे निवेदन प्रस्तुति अनन्तरं मतगणना अनिश्चयं प्राप्तास्ति। मतदाने असहभागिनां विदेशं गतानां मृतानां च जनानां मतं निपातितमिति आरोपेण कांग्रेस दलेन पञ्चानां मतदान स्थलानां सप्तदशसु मतदान केन्द्रेषु पुनर्निर्वाचनम् अभियाच निवेदनम् प्रस्तुतम् वर्तते। एवमेव नेपाली कांग्रेस दलस्य प्रभावस्य मतदान केन्द्रणा मतदान स्थलानि नियन्त्र विदेश स्थितानां मृत्युपादन क्रमे जनपदात् बहिस्थानां मृतानां जनानां मतम् निपातितम् इति आरोप्य एमाले दलेन सप्तदशसु मतदान केन्द्रेषु पुनर्निर्वाचनम् अभियाच्य आयोगे निवेदनम् प्रस्तुतम् अस्ति। कांग्रेस एमाले दलाभ्यां पुनर्निर्वाचनम् अभियाच्य बाजुरावर्तिनी मुख्य निर्वाचन अधिकृतस्य कार्यालय निवेदन प्रस्तुति पश्चात् आयोगेन संघटित अनुसन्धान समूह बाजुरा जनपदम् प्राप्तो वर्तते। सुनसरी जनपदस्य चतुर्थ निर्वाचन क्षेत्रे नेपाली कांग्रेस दलस्य प्रत्याशिना ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्किणा पुनर्मतगणना विधातुम् अभियाचितम् अस्ति। गत शनिश्चरवासरस्य दिवस समयात् अपरुद्ध मतगणना ह्य सर्वदलीय उपवेशम् आयोज्य पुनः प्रारप्स्यति इत्युक्तं सदपि सर्वदलीय उपवेशे कस्यापि सहमति अधरणस्य पश्चात् पुनर्मतगणनाम् अभियाच कार्यक्रम ह्य निर्वाचन आयोगे निवेदन प्रदत्तमस्ति। नेपाली कांग्रेस दलस्य नेता प्रकाश मान सिंह नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीन सह ह्य सायं मेलवार्ता अकरोत्। बालकोट वर्तिनी ओलीन निवासे बीते तस्मिन् मेलने सामूहिक राजनीतिक विषयेषु विमर्शनेन सह परस्परं वर्धापनं व्यक्तम् इति नेतु सिंहस्य सचिवालयेन ज्ञापितमस्ति। मेलने सामान्यतो नैर्वाचनिक समीक्षां विधाय सामूहिक राष्ट्र राजनीति विषय नेतृद्वयस्य मध्ये विमृष्टमिति नेतु सिंहस्य स्वकीय सचिव यूपी लामिछाने अज्ञापयत्। नूतन सर्वकारस्य संघटनाय विहितस्य प्रयासस्य उपक्रमे अध्यक्षस्य ओलीन नेतु सिंहस्य च मध्ये मेलवार्तायां सम्भूता अस्ति। अद्य विवाह पञ्चमी पर्व नेपाली सभक्ति भगवत श्रीरामचन्द्रस्य मातु जानक्यस्य पूजाराधन विधाय समाद्रियते। अवसरेस्मिन् जनकपुरे महत् धार्मिक मेलापकम् आयोजितमस्ति यत्र देशस्य सुदूर भूभागेभ्य भारत देशात् च श्रद्धालु भक्तजना उपतिष्ठन्ते। अद्य प्रत्युषादेव धनुष सागर गंगा सागर स्थान विधाय भगवत श्रीरामचन्द्रस्य जगत जनन्यास्य दर्शन पूजनार्थं श्रीराम जानक्यो मन्दिरौ दर्शनार्थिनं विपुल सम्वर्धो दृश्यते। पुरा त्रेतायुगे मर्यादा पुरूषोत्तमेन श्रीरामेण राजर्षे जनकस्य प्रतिज्ञां प्रपूर्य तदीय सुपुत्र्या सीतया सह अस्यामेव तिथौ विवाह विहित इत्यालक्ष्य भक्त सज्जन महाजन पूजक कीर्तकानं भव्या वरयात्रा राम मन्दिरात् जानकी मन्दिरम् एत्य उभयो आदर्श पात्रयो विवाहं सम्पादयति एवं शोभायात्रा सवाद्यवादन जनकपुर नगरं च परिक्रामति। नेपाल भारतीयमध्ये बहुभ्य शतकेभ्य स्थापितान् धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक सम्बन्धान् इतोऽपि दृढयितुम् अनेन पर्वणा साथीसाय महत्वपूर्ण भूमिका निर्विढा वर्तते। अत्रान्तरे मधेस प्रदेश सर्वकारेण विवाह पञ्चमी महोत्सवस्य अवसरे अद्य आ प्रदेशं सार्वजनिक अवकाश प्रदत्तो वर्तते। एवमेव जनकपुर धाम्नो नैजेषु सामुदायिकेषु विद्यालयेषु गतदिवसत दिवसत्रयावधये अवकाश प्रदत्तोऽस्ति। उपलक्ष्येस्मिन् शुभकामना सन्देशं ददत्या राष्ट्रपतिना विद्यादेवी भण्डारिणा अनेन पर्वणा राष्ट्रियकतां प्रवर्ध्य सद्भाव सहिष्णुता बन्धुत्वानां भावानां प्रगाढीकर्तुं सहयोग प्राप्यते इति विश्वास व्यक्तोऽस्ति। राष्ट्रपतिना भण्डारिणा सन्देशे प्राचीन सांस्कृतिक विवाह पञ्चमी पर्वोत्सव राष्ट्रस्य सामाजिक सांस्कृतिक विविधता मध्ये विद्यमानां एकतां सुदृढीकर्तुं मौलिक संस्कृति संरक्षित संवर्धयितुं च सर्वेभ्यो नेपालीभ्य सभ्य सुसंस्कृतिक समाज सन्निर्माण अग्रेसर भवितुं प्रेरणां प्रददातु इति कामना व्यक्ता अस्ति।